बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की, श्री करौथा धाम की जय, सत सहे गरीब नमो नमो सतपुरै सिको नम शिकार गुरु के नई सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्व सिद्धि नई सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम परनामे आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बाने निराकार निर्विषम काल जाल बैबंधनम निर्लेपम निज निरगुणम अकल अनुपेशन गुणम सोहम सुरति समाप्त सकल समाना निरतल उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवा था पार पार गरीब जो सुमर सिद्ध होई गण नायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊ गण नायक देवन देवा चरण कमल लोला आद्यंत करु सेवा परम शक्ति संगीतम ऋद सिद्ध दाता सोई अविगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन धामे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गाव गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म रह जावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे तेतीस कोटि अदारा जावे शेष अठासी उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी तेतीस कोटि अदारा जावै शेष अठासी उतर भव जल पारा कट है यम की फांसी सत कर जोरों विनती करूं दरों चरण पर शीशे गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दिया नाम बख्शीश कोटि कोटि सजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियो मैं बंदी जम गुलाम कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम गले प्रेम की जेवड़ी जांखें सोवा जाऊं मैं तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं जो रखो तो ही रहूं जो देव सुख अब गुण किए तो बोत किए करत न मनी हारे बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार अब गुण मेरे बाप जी ही बख्शो गरीब नवाज जो मैं पूत कपूत हूँ बरतता को लाज मैं अपराधी जन्म का नक्शक बरे विकार
तुम दाता दुख वंजना मेरी कर सवर। राम नाम रटते रहो जब तक खट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के हे भनक पड़ेगी काम। लूट सको तो लूटियो राम नाम की लूटी, पीछे फिर पछताओगे हे प्राण जाएंगे छूटे। नहीं भरोसा देही का विंस जवे क्षण माही, श्वास उसास नाम जपो हो और यतन कछ नाही।
परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर पुरुष सारी सृष्टि के रतन हार कुल मालिक परमेश्वर कबीर साहिब की असीम रजात है। इस पवित्र नगर जींद के अंदर ये परमात्मा की अमर कथा आज प्रारंभ हुई। ये 16 अप्रैल सन 2004 का शुभ दिन शुभ घड़ी इस पवित्र नगरी को और इन पुण्य आत्माओं को प्राप्त हुआ। सौभाग्य है आपका। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक आप ही आते हैं अपने सतलोक को त्याग कर इस काल के लोक में हम नादान आत्माओं को अपने वास्तविक घर का ज्ञान कराने के लिए। तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या था, तुम कर क्या रहे हो, ये ज्ञान आपको सत्संग से प्रारंभ होगा। और सत्संग के अंदर ये आत्मा जब आती है, ये पुण्य आत्मा, मानो उस दिन आपके बहुत ही पुण्यक्रम आपके साथ होते हैं। ना जाने कौन से जन्म का ऐसा शुभ संस्कार है जिसके कारण आप इस शुभ स्थल पर आ पाए। तुलसीदास जी कहते हैं, सकल पदार्थ है जगमाही और कर्म ही नरपावन है। हमारे भागों वाले को ऐसे शुभ समागम उपलब्ध नहीं हुआ करते। प्रथम तो ये प्राणी बहुत पुण्यकर्मी है जिसको आज मानव शरीर प्राप्त है। मानव शरीर के अंदर हमें बहुत ही अलग से सुविधाएं प्राप्त हैं अन्य प्राणियों की तुलना में। ये ऐसा क्यों है हम कभी नहीं सोचते इस बात के ऊपर। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, उन बच्चों की पोशाक अलग होती है, उन बच्चों को सुविधा भी अलग होती है। माता पिता सारा दिन मजदूरी करते हैं या अपना कोई व्यवसाय करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं और बच्चों को फ्री छोड़ देते हैं, बेटा तुम पढ़ो, अपनी शिक्षा ग्रहण करो, उनको अच्छे स्वच्छ कपड़े, हर सुविधा, हॉस्टल के अंदर उनकी कई बार सुविधा हो जाती है तो वहां बेटे अपना पढ़ो और सब अपना सफल करो अपने जीवन को। आज जिन पुण्यात्माओं को मानव शरीर उपलब्ध है, स्त्री या पुरुष, ये मानव शरीर कहलाता है, इसको ह्यूमन बॉडी कहते हैं अंग्रेजी में। तो जिनको आज मानव शरीर प्राप्त है, ये पोशाक अलग से मिली है अन्य प्राणियों से, तो इन सबको प्रभु पाने वाले विद्यालय में प्रवेश हो चुका है। ये इतने शुभ नंबर हैं इनके, आपके इतने अच्छे नंबर हैं पिछले कि आपको परमात्मा पाने वाले विद्यालय में प्रवेश हो चुका है। अब जो बच्चे प्रवेश प्राप्त कर लेते हैं वो बहुत अच्छे नंबर होते हैं उनके, वो पास हो चुके होते हैं, तभी दूसरी क्लासेज में यानी कक्षाओं में वो प्रवेश पाते हैं। और जो बच्चे
जैसे शिक्षक भी बताते हैं बेटा पढ़ो तुम्हारा जीवन भविष्य बहुत अच्छा होगा, अच्छे उच्च अधिकारी बनोगे या कोई अपना बिजनेस व्यापार ठीक कर पाओगे अगर शिक्षित होगे तो। माता पिता भी बताते हैं कि बेटा हम तो दुखी हो ही रहे हैं क्योंकि हम शिक्षा नहीं ग्रहण की, तुम बेटे पढ़ो अपना अच्छी तरह। या जिनके स्वयं माता पिता भी शिक्षित हैं उच्च पोस्ट प्राप्त है या कोई अच्छा बिजनेस व्यापार प्राप्त है तो वो कहता बेटा देखो हम भी पढ़े थे तो हमें ये सुख हुआ, आज हमें उच्च जो ना पद प्राप्त है, समय पर रोटी अच्छी मिल रही है, यदि हम शिक्षा ग्रहण नहीं करते तो आज हम भी मजदूर होते और तुम भी दुखी होते। इसलिए इन सब उदाहरणों को देकर उस बच्चे के हृदय में, बेटा और बेटी के हृदय में ये धारणा पैदा की जाती है कि शिक्षा ग्रहण कर लेगा तो तेरा जीवन सफल होगा, तो कभी दुखी ना होगा। जिन बच्चों को वो शिक्षा माता पिता की या अपने टीचर्स की या आसपास रिश्तेदार भाईचारे की शिक्षा ये समझ में आ जाती है कि ये कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है और उनको सही मानकर दिन रात एक करके और अपनी पढ़ाई कर लेता है तो वो उस सुविधा को प्राप्त कर लेता है जो उसको पहले वर्णन किया जाता था। और जो बच्चा उन शिक्षाओं को कानों पर टाल दे, नहीं सुने और उसके विपरीत करे, शिक्षा ग्रहण करे नहीं, कभी सिनेमा देखा कभी स्कूल का पीछे बैठकर रोटी खाकर वापस आ जाए तो वो बच्चा आखिर में क्या होगा, फिर कष्ट उठाएगा। कैसे कष्ट उठाएगा कि मजदूरी कर रहा होगा। और जो बच्चा सफल हो गया मेहनत करके अपनी विद्या सफल की उसने, फिर वो उच्च पोस्ट पे कोई अच्छा अधिकारी या कर्मचारी होगा। एक व्यक्ति कह रहा था कि उसने देखा कि उसका एक सहपाठी जो वो दोनों स्कूल जाया करते थे, कक्षा विद्यालय जाते थे, एक तो वहां सड़क के ऊपर टोकरी डाल रहा है, मजदूरी कर रहा है, और उसका सहपाठी कार में बैठा जा रहा है, सरकारी कार में, जीप में। तो तब वो कहता है ये मेरे साथ पढ़ा करता, मेरे कर्म फूट गए, मैं पढ़ा नहीं, आज देखो मैं मजदूरी कर रहा हूं और ये कार में जा रहा है। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि करता था जब क्यों किया, करके क्यों पछतावे, और बोया पेड़ बबूल का वीरा, आम कहां से खावे। अब आज स्थिति अपनी वही है, जो इस सत्संग के वचनों को उस अध्यापक जैसे और माता पिता जैसे समझ लेगा वो प्राणी अपना जीवन सफल कर लेगा, और जो सोचे किसने देखा है देखी जाएगी। क्योंकि जो बच्चे मस्ती करते हैं वो ये सोचते हैं कि अच्छी समय पर रोटी मिले, माता पिता पैसे दे दे, बढ़िया कपड़े मिल गए, वो ये सोचे हैं ऐसे मौज रहेगी, इसलिए वो पढ़ते नहीं अपनी मूर्खता के कारण। और ये नहीं मालूम नादान ये तो सदा नहीं रहेगी मौज। ऐसे ही जिनको आज समय पर रोटी मिल रही है, अच्छी कोई पोस्ट प्राप्त है या जिसका अच्छा बिजनेस है, समय पर टूक मिल रहे हैं, अब वो नहीं सोचा है आगे भी ऐसी मौज बनेगी, यह भूल लेकर डूबा इस प्राणी को, आगे नहीं मौज बनेगी, आगे तो उनकी मौज बनेगी जो इसी गर्मी में और अपने सह परिवार सत्संग में आवेंगे और परमात्मा के वचन सुनेंगे, फिर उन पर विचार करेंगे, भविष्य में उनकी ही मौज होगी। उनकी मौज नहीं वो है जो सत्संग की तरफ देखते भी नहीं। अब देखो कोई भी ज्ञान है चाहे अच्छा है या बुरा है, वो किसी संगत से ज्ञान होता है। कुसंगत में पढ़ने से ये प्राणी शराबी कबाबी बन जाता है, चोर बन जाता है, एक दिन नहीं बन जाता, उसमें समय लगता है। जैसे कोई शराब पी रहा है, छोटा सा बच्चा 10-12 वर्ष का उनके पास बैठने लग जाए तो उसको धीरे धीरे वो प्रैक्टिस कराया करें, कभी तो उसने गुजिया खिलाएंगे, कभी नो कहेंगे ले थोड़ी सी पी ले, आज प्रथम बार पीएगा तो वो नहीं उस शराब को सहन कर सकता, उल्टी आवाज खाम होकर कान में गए उसके जो है ना बुरा हाल हो जाए, लेकिन फिर भी वो जो है ना पक्के होते हैं, वो इलाका माने उसको सिखा कर माने, और फिर जब वो उस पर व्यस्त हो जाता है फिर रोजाना की मनमाने एक बोतल खेचे। अब इसी प्रकार जब सत्संग में आओगे तो एक दिन में ठीक है, ना भी आपको अच्छा लगे सत्संग कोई बात नहीं, पर आते ही रहिए, हम भी ऐसे ही करेंगे आपके साथ, फिर धीरे धीरे आते रहना, आते रहना, और एक दिन इतने अब व्यस्त हो जाओगे कि आप मेरे ख्याल में 100 किलोमीटर जाकर सत्संग को सुनोगे, ऐसा क्यों होगा।
तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न भवे, जैसे जवर के वेगते भाई भूख विदा हो जावे।
जैसे बीमार आदमी को बुखार हो जाए और बुखार हो जाता है तो उसको वो स्वादिष्ट भोजन जो प्रतिदिन खाया करता था कड़वा लगे कुनीन के साथ। मनुखा दाख, घरवाले कहते हैं ले बेटा मनुखा दाख खा थोड़ी सी, वो कहता मुझे नहीं अच्छी लगती, रख दो एक तरफ, मैं नहीं खा सकता, उल्टी आने को हो जाती है, एक ग्रास नहीं खा पा रहा है रोटी का। कारण क्या है? कहते हैं उसके बीमार ने उसके शरीर की व्यवस्था बिगाड़ दी, जिसके कारण उसको स्वादिष्ट भोजन भी आज कड़वा लग रहा है, अस्वादिष्ट लग रहा है। अब जो प्राणी सत्संग में नहीं आते, आते हैं तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगती। सत्संग के विचार जिनको अच्छे नहीं लगते तो वो समझो उनके ऊपर पाप कर्मों का दबाव है, और जिसके कारण उनके अंतःकरण में कमजोरी आ चुकी है, मलिनता आ गई, और जिसके कारण ये परमात्मा की मनुखा दाख, प्रभु की चर्चा रूपी मनुखा दाख भी उनको कड़वी लगती है, तो समझो उनके ऊपर वो पाप कर्मों का दबाव है। जैसे वो बीमार अगर खाना ना खावे, समझो कुछ दिन का मेहमान है, उसके लिए उसको क्या करना होगा कि जैसे टेबलेट्स होती हैं, कुनीन है या कड़वे कैप्सूल है, इंजेक्शन है, कड़वी दवाई है, पीने के सिरप है, वो उसने पीने पड़ेंगे, चाहे रुचिकर लगे चाहे अरुचिकर, और उस कड़वी दवाइयों को खा गया तो वो स्वस्थ हो जाएगा और उसकी जान बचेगी। इसी प्रकार यदि आप सत्संग आते रहे और ये ना अच्छे लगे तो भी बैठे बैठे सुनते ही रहना, और ये आपके कान के माध्यम से जैसे सिरिंज के द्वारा बॉडी में दवाई जो है ना मेडिसिन प्रवेश की जाती है, ऐसे चली जाएगी और फिर ये अपनी क्रिया करेगी, क्योंकि ये परमात्मा के वचन है और ये आत्मा को अपने साथ खींचते हैं। और जितना भी आपका जैसे बीमार आदमी होता है बुखार उतरता चला जाएगा, जितना ही बुखार कम होगा उतनी ही एकाध ग्रास रोटी खाने लग जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप सत्संग में आते रहिए, ना अच्छा लगे तो भी आते रहिए, और फिर देखना आपको यही अच्छा लगेगा, फिर और अच्छी कोई चीज लगेगी, क्योंकि हम भूल गए उस वस्तु को जिसकी हमें बचपन से मिलना चाहिए था, योगों से तलाश थी और वो हमें नहीं मिल पाई। अब सत्संग के अंदर प्राणी चाहे कोई जानबूझ कर आवे चाहे अनजानपने में आ जाए, सत्संग ने अपना असर करना ही होता है। जैसे अग्नि पर हाथ चाहे कोई जानकर रख दे और चाहे अनजानपने पर रखा जाए, अग्नि अपना स्वभाव रखती है, अर्थात वो अपना इफेक्ट दिखाती है, अपना प्रभाव दिखाओगी। इसी प्रकार सत्संग के अंदर जो पुण्यात्मा एक बार आ गई, क्योंकि सत्संग में वही आओगा पुण्यात्मा होंगे, और चाहे बेशक तय आज आम समाज की दृष्टि से वो कितना ही हमने गिरा हुआ व्यक्ति नजर आता हो, जैसे कोई शराब पीवे और बर्बाद कर लिया परिवार, आप भी बर्बाद हुआ बैठा है साथ में परिवार में अशांति, और वो सत्संग में आ जाओ, वो प्यारी आत्मा, वो पुण्यात्मा होगी जो सत्संग में आ गई तय, और सत्संग में आएगा तो उस पर असर भी होगा। और चाहे कोई चोरी भी करता है, चाहे कोई डाके भी डालता है, अगर सत्संग में आ गया तो उस प्यारी आत्मा, वो पुण्यात्मा होगी अगर सत्संग में आ गया तो, और सत्संग में आने के बाद तो उसके भाग उदय हो जाएंगे, क्योंकि अनजानपने में जो गलतियां की जाती हैं जब ज्ञान होने पर वो प्राणी नहीं करता। जैसे अनजानपने में छोटा सा बच्चा सर्प न पकड़ ले और डस बेच सक लो पर उसको डर कती नहीं, और चाहे बिजली के नंगे तार को छू लेगा, क्योंकि उसको डर नहीं, ज्ञान नहीं तो डर नहीं, ज्ञान होगा तो डर होगा, जब वो बड़ा हो जाएगा समझदार हो जाएगा तो उसको डर लगेगा, और कोई कह देगा ना देखना सामने तार पड़ा है, एकदम दूर हो जाएगा, चाहे वो कहीं से क्रैक भी ना हो तो भी डर लगेगा, क्योंकि वो इतना सयाना हो गया कि हो सके बिजली बड़ी खतरनाक वस्तु है और कहीं क्रैक ना हो, और सयाना होने के बाद कोई कह देगा सर्प है ना होगा तो भी एकदम जंप करेगा, इधर उधर देखेगा कहां वो ऐसा भयंकर जानवर। तो ऐसे जब हम सत्संग में आएंगे तो हमें पता चलेगा कि मनुष्य जीवन ऐसे बर्बाद करने का नहीं है जैसे हम खो रहे थे, और ये बीड़ी शराब मांस तम्बाकू कभी छूना भी नहीं चाहिए था, जिसको हम एक शौक बना लिया, अनजान अपने में यह गलतियां हम करें और ज्ञान होगा तो छूट जाएगी। आज 90% अशांति का कारण, 90% अशांति का कारण आज ये सत्संग की कमी, और जिसके कारण ये प्राणी कोई शराब पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई रिश्वत करे, कोई लेवे, कोई चोरी करे। अब देखो जो रिश्वत लेकर के अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, एक समय ऐसा होगा उसको अपने परिवार को जहर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, चोरी करते हैं, ये परिवार बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। ये कारण क्या है कि ऐसी कुरीति क्यों समाज में प्रवेश होगी? इसका अभाव सत्संग रहा। और सत्संग, अब ये भी नहीं कह सकते कि आज के युग में सत्संग की कमी है, संतों की कमी नहीं, श्रोताओं की कमी नहीं। जहां पर देखें कई लाखों की संख्या में श्रोता चले जाते हैं और उनमें विकार जोके तो घर किए हुए हैं, शराब भी पी जाते हैं, गुट्टी भी लगा जाए, वह बीड़ी भी पी रहे उनके उपदेशी, और आम व्यक्ति से भी गिरा हुआ व्यवहार उन भक्तों का जो उपदेशी बने फिर हैं। इसका कारण क्या है? जब हमें सत्संग प्राप्त होगा फिर ये बुराई नहीं रह सकती, गारंटीड बात है। हमें सत्संग नहीं मिला। अब एक स्थान पर ये दास सत्संग करा था, वहां एक व्यक्ति ने एक पत्र दान पात्र में डाला, उसने क्या लिखा था उस दान पात्र में, पत्र में, कि मैं एक चोर था, मेरी पत्नी दो बच्चों को छोड़कर चली गई और उसके बाद मैंने सोचा भी मैं और तो कोई काम कर नहीं सकता, कुछ दमे की शिकायत थी तो चोरी करने लग गया और 8 वर्ष से एक बहुत बड़े संत का नाम लिख रखा जिसकी आज करोड़ों की संख्या में सत्संग है। 8 वर्ष से उसका नाम भी ले रखा था, उसके उपरांत वह मेरी औरत बाजगी, फिर मैं चोरी करने लग गया और उसके बाद क्या हुआ कि मेरे दोनों बच्चे चूहों की गोली खाकर, दवाई खाकर मर गए पाछे थे। आज भी मैं चोरी करके लाया था और सोचा सत्संग सुनाऊं, उसका पत्र सुन लेता, आंखों में तो पानी पड़ा है। कहने लगा जी मैं जो का तो जो पैसा लाया था चोरी करके, जितने भी पैसे थे वो ज्यों के तो दान पात्र में डाल रहा हूं और आपका उपदेश भी ले लिया है, पर नाम पता नहीं लिखा उसने, मैं कोई बात ना धन है तेरे मात पिता ने। और उसने बताया कि आपने सही बताया सत्संग में कि पूरे संत के बिना ना तो विकार छूटे ना कर्म कटे, और 8 वर्ष से गुरुदेव मैंने नाम भी ले रखा था पर 1% असर मेरा हुआ नहीं उनके वचन का। और आज जो आपने सत्संग फरमाया उसके अंदर मेरा काल जल गया। अब जैसे जो प्राणी चोरी करता है या अपने बच्चों को सुखी करने के लिए दुनिया न लूटे, रिश्वत लेवे, एक 100 रुपये के पीछे बनमाने 20 चक्कर कटा दिए अधिकारी और कर्मचारी एक भोली आत्मा की, और वो रो अकड़ा बैठ कर सारा, और साथ में कोई चोरी करे, कोई दो के 20 बनावे, कोई मिलावट करके बेचे, अब क्या होगा? एक भगत जी कह रहा था जी मैं कैसेट की दुकान बेच कर आकर रखी थी, कैसेट ये दो सीडी और पहले कैसेट इसकी वीडियो क्या नाम टेप वाली, वो मेरे ख्याल में 8 रुपये की कैसेट उसको 9 रुपये की 8 रुपये की मिले। मैं बोला भाई कह की बेचा करता 35 की, तेरा गजब हो, ये कितने तो ठिकाना हो, 8 की 10 ले ले, 12 ले ले, गणाम रहता है। और फिर क्या हालत हो, उसकी एक का लड़की जवान और पागल होगी, ने बोला 2 लाख रुपये तो लाग लिए महाराज जीरी बेराना, कब ठीक होगी? सामने होती है सारी कहानी और फिर भी समझ में नहीं आता, क्योंकि सत्संग का भाव प्राणी को, क्योंकि संत के वचन बिना आत्मा को असर नहीं हो सकता, उस पर ईश्वरीय कृपा होती है, प्रभु की रजा से ये सब कहानी बनती है। भक्त आया, उसने उपदेश लिया, कहने लगा जी मैं तो कभी लुट पिट का आया हूँ आज। मैं क्या हो गया भाई, मेरा एक लड़का था उसके दोनों गुर्दे खराब हो गए। पहले तो वैसे डॉक्टरों का देसी बदा का, फिर शाणा का, फिर इनका झाड़े लुवाण वाला कर, ऋषि केस वाला कर, ना जाने कहाँ कहाँ गई चारों धामों पर। और जब कति अंत आ लिया, डॉक्टर बोले भाई अंत हो लिया इसका, दोनों गुर्दे खत्म है, गुर्दा लाओ। और इसने जान बचाना चाहते एक ही पुत्र ने बोला जी हमने ऐसे किसी से कह सुन के गुर्दा लिया, लाखों रुपये उसने लिए, रिश्तेदार था या कोई जान पहचान का था। 3.5 लाख रुपये आज से 15 साल पहले बताओ था। लड़का जब तक ठीक हो गया, 6 महीने के बाद एक्सीडेंट में मर गया। ए परमात्मा, फिर बताओ था अपनी कहानी। ने बोला जी मैं घना नीच आत्मा था, वर्णन करूं तो मैंने शर्म आवन वो कर्म जो मैं कराया करता। तो यहां अब सत्संग माने से इन बातों का ज्ञान होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। परमात्मा का संविधान है कि न तो एक तिल आप ज्यादा ले सकते, न एक तिल कम कर सकते। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। अब जो मान लीजिए कोई 2 पैसे इधर उधर करके बना भी लेगा, 1 लाख रुपये लूट लिए, 2 लूट लिए, एक बालक बीमार हो गया, 3 लाख गए, वो पैसे तो गए, परेशानी नारी लड़का गया, और जो पाप कमाए थे वह ज्यों के त्यों अभी वो खत्म नहीं हुए। अभी एक दिन सोचा वो खत्म हो गए, वो तो अभी कुत्ता बनेगा, खाज लगेगी, कीड़े पड़ेंगे, वो तो बाकी रह रहे। तो ये अज्ञानता क्यों है? क्योंकि हम भगवान की महिमा से अपरिचित हो लिए। अगर इंसान अपने ही प्रयत्न और अपनी मेहनत से अपनी सोच पूछे जैसा उकार हो जाता, फिर क्या जरूरत मेहनत करने की। फिर परमात्मा का संविधान कहा रहा, एक नया पैसा आप ज्यादा नहीं ले सकते या भूल सा अपने। और जब ये हृदय में जच जाएगी कि वास्तव में यह बात 100 की 100 सत्य है, ना तो को बुराई करने दिल करे और भगवान में आस्था बढ़ जाए और परमात्मा फिर अपने गुण प्रयोग करे। आज ये जो सत्संग हो रहा है ये एक परिवार करा रहा है, वो पुण्यात्मा उन्होंने अब क्या बताते हैं, जब पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की शरण में हम आ जाएंगे, उसके पास एक वीटो पावर है, वो अपनी समर्थता से अपने कोष से अपने खजाने से आपके ना भाग में होगा तो भी दे देगा। क्योंकि पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म समर्थ शक्ति है, बाकी जो भगवान है वो केवल वर्क डन देते हैं, अपने किया हुआ कर्म ही देते हैं। कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्म और परब्रह्म तक, ये जितने भी प्रभु हैं ये केवल किए हुए कर्म का आपको फल देंगे, उससे कम बत्ती नहीं कर सकते। और पूर्ण ब्रह्म जो परम अक्षर पुरुष, जो सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, वो पूर्ण ब्रह्म है, उसके पास ये परम शक्ति है कि वो आपके ना भाग में होगा तो भी दे देगा। इसलिए कि इस बच्चे की आस्था मेरे में ज्यादा बढ़ जाए, अपनी भक्ति डट कर ले, इसका जीवन सफल हो जाए। तो इस परिवार ने उपदेश लिए, लगभग 4 वर्ष 5 वर्ष हो गए। इस बहन ने एक दिन कहा जी मैं एक कपड़े की दुकान करना चाहती हूँ, कपड़ा रख लें घर पे ही, वैसे तो सर्विस भी करता हो भक्त, फिर भी तो लड़की ने सोचा थी भी खाली वैसे खाली बैठना थे अपना कि मैं पार्ट टाइम में भी कर लूं, अच्छी बात है। पर मैंने कहा बेटी 2 के 20 मत बनाना, हिसाब से ही करना। बोला जी जैसे बिल्कुल जायज लेंगे हम, ज्यादा नहीं करेंगे। और ये भी मना किया, माँ बहन आजकल मेरे 100 रूम बने वैसे बड़े बड़े शहरों में, बता तेरे वहां दुकान कहाँ, कौन कपड़े बेचेगा, बेचेगी रहने दे। पर वो तो पूरी तैयारी होकर ली थी, बहन भाइया ने भी मेरा भाई भी साथ में है और कर लेंगे, अच्छा बेटी कर लेते हैं। 6 महीनों के बाद 7,000 का नुकसान हो गया। वो कहने लगी जी दुकान तो ना चली, मां कोई बात ना बेटी, जो भगवान करता ठीक ही करता, तेरी बड़ी लड़की जी बिल्कुल सही करता है, जो परमात्मा करेगा बंदी छोड़ वो बिल्कुल सही करेगा, गलत हो ही नहीं सकता, ये भी हमारे फायदे में। इतना दृढ़ विश्वास चाहिए अपने परम पिता पे, फिर देखना ये क्यों कर खेल करे। हर जगह ढीले उठ छोड़ जाती, नो कहती के फायदा हुआ, नाम भी ले रखा था, मारा 7,000 का नुकसान हो गया, तो कती बात बिगड़ जाती। परमात्मा हाथ हटा लेता आस्था हट जानते, और यह बात बिगड़ जाती। और आज ये खुला पाठ करा रही जिसमें लाखों रुपए लगेंगे, 1 साल के बाद परमात्मा ने ऐसा छप्पर पाट दिया। तो ये दो चावे सो कर सकता और एक नंबर तो दे दे, दो भी ना होने दे। आपको बताता हूँ, ये दास जब सर्विस करता था, नाम ले लिया था और अपनी नीत साबित कर ली थी उस टाइम दास ने, चाहे मरे चाहे जीवा ही अपना परमात्मा विश्वास करके चलेंगे। एक प्लाट ले लिया भिवानी में, एक दोस्त ने वैसे कह दिया ले ले, तो वहां ले लेते हैं और उसमें थोड़ा सा मकान भी बना दिया। कुल मेरे ख्याल में 40,000 रूपये लगे होंगे। डेढ़ साल के बाद अपने आप एक गाहक आ गया, वो कहने लगा जी मकान बेच लो। मैं ना बेचना था वैसे, कह दिया 1.5 लाख रूपया लूंगा, बेचना नहीं था और वेलेट 40 ले लो। मैं सोचा बेवकूफ, वो सारा 50 का भी कोनी, 1.40 का, वहां फिर आइए तो फिर बात करेंगे। वो तो मान्या कोनी ने। उसमें क्या हुआ कि उसके साथ से बाईपास निकल गया, मुझे वो मुझे मालूम नहीं था और वहां रेट हो गए मेरे ख्याल में 100 गुना ज्यादा। अब देखो उसने भी कम से कम लाखों का फायदा और मुझे भी लाखों का फायदा, एक नंबर से हो गया वो। और दो नंबर से कर्म बिगड़ते और कदे 7 जन्म भी नहीं कमा सका इतने हम। तो उस दिन के बाद ये भी हाथ जोड़ दिया, परमेश्वर या माया भी ना दियो, या भी ले डूबा इंसान ने, क्योंकि हम तो आपके लिए आपके पाने के लिए निकले थे, ये भी ज्यादा ना देना। क्या बताते हैं, नौका में पानी बढ़े और घर में बढ़ जा दाम, फिर दोनों हाथ बगाइयो यही सियाणो काम। घर में दाम जब बढ़ेंगे तो दो नंबर का काम करेगा, ना कति नहीं हो सकते, ना गुजारा मुश्किल चले, और घने हो जाए तो वो डबोएंगे। कौन बे में को बच्छावेगी, कोई गुटी ला होगा, कोई कार ले लेगा, कि एक्सीडेंट करके ठोक देगा, टांग तोड़ा पड़ा रहेगा, 6 महीने उसे लाखों रूपये लगेंगे। तो इसलिए अपने उस परमेश्वर में श्रद्धा रखे और दान धर्म की तरफ नीत फालतू रखे। और जितना भी हम पुण्य विधिवत करेंगे, ऐसे नहीं अपनी मर्जी तक की दान कर दे, नहीं, पूरे संत के माध्यम से किया हुआ दान ही प्रतिफल देगा, ना तो कति नहीं दे। गीता जी में लिखा कि उपात्र को दिया हुआ पुण्य दान जो है लाभ के स्थान पर हानि करता है। गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देव दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे कुछ हो, थोड़ा गुरु भी पूरे हो अधूरे नहीं, और पूरे और अधूरों का क्या ज्ञान हो, कैसे निर्णय हो, तो वो आपको इस 4 दिन के सत्संग में यही ज्ञान होगा कि पूरा संत कौन है, अधूरा कौन है, और वो परमात्मा कौन है जिसकी चारों वेद संकेत करेंगे, उस परमेश्वर की भक्ति करो। पवित्र गीता जी संकेत करे कि वो परमात्मा कोई और है। अर्जुन जो गीता बोलने वाला भगवान कहता है कि मैं समर्थ शक्ति नहीं हूं, और मेरे और तेरे तो बहुत जन्म हो चुके हैं, जन्म और मृत्यु सदा होती रहेगी, हम अविनाशी नहीं है, वो परमात्मा कोई और है। उसकी भक्ति करने से ये जीव फिर जन्म मृत्यु रहित हो जाता है, उसका फिर कभी मृत्यु नहीं होता। अब वो उस परमात्मा की जानकारी और शास्त्र आधार पर आपको बिल्कुल प्रमाणित दिया जाएगा कि वो परमात्मा कौन है, कौन जो हमारे पाप कर्मों को काट दे, जो हमारी उम्र भी बढ़ा दे, हमारी मौत टाल दे। जैसे हिंदुस्तान के राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो फांसी की सजा भी खत्म कर सकता है, उसको ना किसी गवाह की आवश्यकता, ना किसी वकील की आवश्यकता, अगर उसमें रहम आ जाता है पूरे के पूरे हिंदुस्तान के कैदियों की वो 1 मिनट में खत्म कर सकता, उसको ये कहने वाला नहीं आपने ये कर दिया, वो सुप्रीम पावर है हिंदुस्तान की। ऐसे जब परम शक्ति से हमारा परिचय हो जाएगा तो हमारे ये पाप कर्मों का निवारण वो कर देगा। अभी तक जितने भी महापुरुषों संतों के विचार उस परम पिता की थूरी छोड़ गए, उस पूर्ण ब्रह्म की जो महिमा हम सुना करते वो तो हमारे तक पहुंची नहीं थी, हमारे तक पहुंची थी ब्रह्म, ब्रह्म तक की, परब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु महेश तक की। तो इनके बारे में क्या ज्ञान दिया गया कि जैसा कर्म प्राणी करेगा वो तो भोगना ही पड़ेगा, और कर्म का दंड जीव को भोगना ही पड़ता, प्रारब्ध भोगे ही सरेगा। जब भी हम किसी संत के पास जाते थे तो यही प्रश्न और उत्तर उनका यही होता था, और साथ में उदाहरण दिया करते थे कि जैसे भगवान श्री राम ने सुग्रीव के भाई बाली की हत्या की थी एक वृक्ष की ओट लेकर, उसका भी कर्म दंड कर्म फल उसने भोगना पड़ा श्री कृष्ण बनकर त्रेता युग द्वापर युग में। तो हम चुप हो जाते थे भाई, जब भगवानों ने भी कर्म भोगने पड़े तो हम कौन से खेत की मूली, कर्म तो भोगने पड़ते होंगे। अब जब हमें ये ज्ञान हुआ, सत्संग मिला, तब वो सत्संग नहीं था, क्योंकि सत्संग वो होता जो केवल शास्त्र आधार हो, बाकी तो लोक वेद होता। लोक वेद क्या होता? सुनी सुनाई कथाएं, सुना सुना ज्ञान, अपने दंत कथाएं, अपने हिसाब के बनाए हुए, जो शास्त्र से ना मिलते हैं, उनको लोक वेद कहते हैं। अब कबीर परमात्मा अपनी महिमा आप ही सुनाने के लिए आते हैं सतलोक को छोड़कर, और क्या बताते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले फिर दीपक दे दिया आज। पीछे लग गया जाऊं था, हमें समझाते हो परमात्मा कि तुम ऐसे कर रहे हो, कैसे कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ। लोक वेद क्या होता है? जैसे किसी क्षेत्र में दबन भौरी की पूजा, किसी क्षेत्र में पंडारे की मान, किसी क्षेत्र में किता शेख पाथरी वाली की, किसी का श्याम जी की, किसी का अठम की, किसी का छठ की, किसी का सत्यम की, और कोई हनुमान पुजारी, और कोई श्री गणेश पुजारी, कोई माता के गुण गावे, कोई रामकृष्ण की जय बोलकर, और तीर्थ धामों पर जो है ना अपनी घूम कर मुक्ति चाहे, ये लोक वेद है। जो अपने पवित्र शास्त्र चारों वेदों से और पवित्र शास्त्र गीता जी से मेल नहीं खाता, वो लोक वेद है, वो दंत कथा, वो सुना सुनाया ज्ञान है। और ऐसे जो करता है उसको कोई लाभ नहीं, यूजलेस, उसका जीवन व्यर्थ हो रहा है। अब क्या बताते हैं परमात्मा के पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सदगुरु मिले वो दीपक दे दिया हाथ। कौन सा दीपक दे दिया? सत्ज्ञान रूपी दीपक दे दिया, जो हमारे पवित्र शास्त्रों में प्रमाण था। अब देखिएगा, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं पवित्र गीता जी, पवित्र चारों वेद और पवित्र गीता जी, ये वो पुण्य शास्त्र हैं, ये वो पवित्र शास्त्र हैं, ये ना किसी संबंध, किसी धर्म से संबंधित, ना किसी जाति या किसी पंथ से संबंधित। ये उस समय रचे गए थे जब ना कोई हिंदू था, ना मुसलमान, सिख, ना ईसाई, केवल मानव मात्र का एकमात्र कल्याण का अगर शास्त्र है ब्रह्म तक की साधना का, तो वेद और गीता, चारों वेद उर्फ गीता, चारों वेद उर्फ गीता जी, यानी चारों वेदों का सार, एक संक्षिप्त यानी गागर में सागर समझो, ये गीता जी है। और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की जानकारी के लिए हमें पूर्ण परमात्मा का शास्त्र जो कबीर सागर है, कबीर साहब की वाणी है, वो एक नंबर का शास्त्र है पूर्ण परमात्मा का। और दूसरे नंबर पर ब्रह्म तक का एक नंबर के शास्त्र ये चारों वेद या गीता एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं जरा सा भी। और पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की वाणी, साथ में जिन्होंने उस परमेश्वर को पाया सतलोक में, सचखंड में, अकाल मूर्त को देखा, सतपुरुष को, सबल स्वरूपी राम को, परम अक्षर पुरुष को, उन महापुरुषों की वाणी जो उन्होंने आंखों देखा, हाल लिखा उस परमेश्वर का, उनमें कौन कौन है? आदरणीय श्री धर्मदास जी, आदरणीय श्री दादूदास जी, आदरणीय श्री मलुकदास जी, आदरणीय श्री गरीबदास जी, आदरणीय श्री रामानंद जी, आदरणीय श्री गुरु नानक देव जी। इन छह महापुरुषों की वो वाणी है जो कबीर परमात्मा ने स्वयं आकर बताई थी कि वो परमात्मा कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसको पाने की विधि कैसी है, वो कौन मंत्र है, कौन नाम है, कौन जाप है जिससे वो सतपुरुष के दर्शन हो, जो सतलोक जा सके। तो उनकी वाणी एक है जो कबीर साहब से मिलती है, और उनके द्वारा दिया गया वर्णन भी यही है कि वो परमात्मा कैसा है जो सतपुरुष है। अभी तक जितने भी ये सतपुरुष सतलोक की महिमा गाने वाले पंथ, ये तीन चार पंथ है, विशेषकर तो राधा स्वामी पंथ ने ही इसका ठेका ले रखा सतलोक का, और सतलोक के बारे में एबीसी ज्ञान नहीं, उनको आपके सामने प्रमाण देगा ये दास, आपको आप हैरान रह जाओगे इतने इतनी दुनिया पीछे कैसे लगी, क्योंकि हम तो देखो जिज्ञासु हैं, हम तो प्यासा प्यासा है पानी के लिए, कोई कहेगा पूर्व में जाओ भाग्या जाएगा, फिर कोई कहेगा पश्चिम में जाओ वो सामने कूप है वहां भी जाएगा, वहां भी नहीं मिल रहा वो कहेगा आगे उधर कूप है तो वहां जाएगा, जब तक उसे जल नहीं मिलेगा वो भरमता रहेगा, और नहीं मिला तो बेचारा प्यासा मर जाएगा। तो आज तक वो भी ये बताते हैं कि परमात्मा के निराकार है, कोई आकार नहीं, केवल प्रकाश दिखाई देता है, केवल उसका शब्द धुन सुनना ही उसका रूप है, वो बस यही उसकी उपलब्धि है। और जबकि पवित्र चारों शास्त्र चारों शास्त्रों धर्मों के पवित्र शास्त्र प्रमाण देते हैं वो सत्पुरुष पूर्ण परमात्मा जो है मनुष्य जैसा है और उसका नाम कबीर है और सतलोक में रहता है, मनुष्य जैसा है और उसका एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसा तेज भी कम पड़े उनके सब प्रकाशी शरीर है। और ये बताते हैं परमात्मा तो है ही नहीं, वो तो निराकार है और केवल मनुष्य जो गुरुजी है ना, ये है वो भगवान। बस गुरुजी नीचा का आकार बन जाए माँ के पेट में आके और वहां निराकार है, ये इनकी अधूरी छुरी। अभी आपको दिखाता हूँ सबसे पहले कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करते हैं वो ना उनको सिद्धि हो ना परमगति हो और ना ही उनको कोई सुख हो। और फिर दिखाता हूँ चारों पवित्र धर्मों में भगवान कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, और फिर इन महापुरुषों की छुरी देखना आप। अब ये क्या बताया करते कि ना तो कर्म कटे, ये भी यही कहते हैं कि प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए आपके पैर में कांटा लग गया और मेरे पास आओ, क्या दर्द हो रहा है किस कारण से, मैं देखकर बताऊं भाई कांटा लग गया तुझे तो, और मैं कहूं भी कांटा तो निकलेगा नहीं और जूते पहन लो, आगे कांटा नहीं लगेगा तो कभी नहीं, जूते कांटा लगे पैर में जूते पहने नहीं जा सकते। ये तो वो कह सकता जो अब बालक हो, एक 3 साल के बच्चे का कांटा लग जाए और 5 वर्ष के तो वो समाधान चावे, तो वो यही बताओगा भाई कांटा तो निकले नहीं, ले जूते पहन ले। अब वो जूते बिना पहने जहाँ पहन के दिखाए, पहन के पटक देगा ठाका है और दलद ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे ये संतों के विचार हैं, ये आप भी बालक हम तो अनजान थे, ये हमें ये सोच पर सोच दिए वे पाप तक कटे नहीं पर अब तो भोगना ही पड़ेगा, आगे भक्ति कर लो अब भविष्य तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। देखो जिसके ऊपर किसी इस इतनी भयंकर कोई कर्म की मार आई हुई है जिसके कारण वो परेशान है, किसी भी कारण से हो सके, जब तक वो परेशानी दूर नहीं होगी तो न भक्ति में रुचि बढ़ नहीं सकती। और जब वो परेशानी दूर हो जाएगी वह टेंशन समाप्त हो जाएगी, जीव की परमात्मा रजा कर देगा, फिर देखा उसके दोनी श्रद्धा भगवान में और इस डर से भक्ति करेगा परमात्मा का, फिर कर ना टूट जाए तो तब भक्ति बनेगी, न ये खिलौने दे रखे हमारे तभी तक। दूसरी ये बताते हैं परमात्मा तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। अब सबसे पहले आपको परमात्मा आकार है या साकार है, कौन है वो, कौन है जिसकी भक्ति करने से जीव छुटकारा होगा, ये प्रमाण आज के सत्संग में रहेगा। पहले आपको गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में आपको दिखाते हैं कि खुद भगवान जो गीता बोलने वाला प्रभु है वो कहता है कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करते हैं। शास्त्र विधि क्या है, क्योंकि गीता जो बोली जा रही है गीता जी और वेदों की तरफ संकेत है, वेद चारों पवित्र वेद जो है ये केवल एकमात्र ब्रह्म तक की साधना का और पूर्ण परमात्मा के ज्ञान का एक अनमोल स्रोत है, अथा स्रोत है। देखिएगा इसमें गीता जी को बोल कौन रहा है, आप चारों दिन सुनना सत्संग प्रेम पूर्वक, आपको पता चलेगा हम कहाँ खड़े थे, हमें क्या बताई गई थी आज तक। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 16 का और श्लोक नंबर 23 और 24 देखिए। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। और इन तीन चीजों के लिए परमात्मा की भक्ति करते हैं, ना तो सुख होए, ना को परम सिद्धि होए और ना उसकी परम गति होए। फिर और क्या होगा, फिर तो पशु बनेंगे हम, 84 में जाएंगे। आगे देखो 24वें श्लोक में, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य कर्तव्य की अवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि को से नियत ही कर्म करने योग्य है। यानी जो शास्त्रों में प्रमाण है भाई वही कर, और करेगा तो देख तेरी कोई लाभ नहीं होगा। अब आज प्रसंग रहेगा कि परमात्मा वो कौन है, परमेश्वर वो सत्पुरुष पूर्ण ब्रह्म और कैसा है वो सत्पुरुष अकाल मूर्त। अकाल मूर्त का अर्थ होता है जिसका काल ना हो, मूर्त माने तस्वीर, वो स्वरूप। नाम तो देते हैं तीन, अकाल मूर्त, सब स्वरूपी राम, सत्पुरुष और भगवान बताओ निराकार। अकाल मूर्त का अर्थ सीधा होता है जिसके जिस स्वरूप का कभी विनाश ना हुआ, वो मनुष्य जैसा है और उसका कभी विनाश नहीं होता, वो अविनाशी। सत्पुरुष माने अविनाशी परमात्मा, सत माने सदा रहने वाला जिसका विनाश ना हो, पुरुष माने प्रभु। और अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, शब्द अखंड होता है, अविनाशी है, वो परमात्मा ही शब्द शब्द स्वरूप है, अर्थात वही अविनाशी है, अविनाशी रूप है, उसका कभी विनाश नहीं होता, इसलिए उसको अविनाशी कहते हैं। अब सबसे पहले आपको दिखाते हैं पवित्र बाइबल, पवित्र बाइबल ये ईसाई और मुसलमान धर्म दोनों को मान्य है, और पवित्र बाइबल का 40% लगभग 40% विवरण इन चारों कुरानों में आता है। पवित्र बाइबल से लेकर आपको कुरान शरीफ और पवित्र चारों वेदों में और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर परमात्मा बताया जाएगा, वो साकार है व निराकार। देखिएगा अब देखो, भक्ति तो हम बाद में करें, पहले ये तो फैसला कर लें वो परमात्मा है कौन जिसकी भक्ति करें। कभी तो हम जैसे रास्ता तय हो गया तो फिर 10 कदम भी रखेंगे तो मंजिल की तरफ होगी। अब हमें ये नहीं मालूम हम जा कहाँ रहे हैं, और स्पीड भी पूरी कर रखी है तो वो व्यर्थ की होगी, क्योंकि 100 किलोमीटर जाकर पता चला तो हम गलत आ गए तो वो व्यर्थ की मेहनत हुई। पहले फैसला करके चला तो समझदार होता है। अब देखिएगा पवित्र बाइबल ये कहां से प्रकाशित है, पवित्र शास्त्र बाइबल लिबरेट इंडिया, बाइबल लिटरेचर 67 बरकार रोड किल्पिक मद्रास दूरवास, ये आपके सामने है। और इसमें बिल्कुल स्टार्ट में क्या है, उत्पत्ति के अंदर विश्व की सृष्टि, इसमें 6 दिन में सृष्टि रची परमात्मा ने, 7वां दिन तगत पर जा विराजा। यहां देखो सृष्टि के 7 दिन, पहला दिन नीचे, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, और यहां देखो ये 5वां दिन, और नीचे देखो ये 6ठा दिन सुनाऊंगा आपको। यहां देखो ये 26 नंबर आयत से, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। अब क्या मतलब हुआ कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अर्थात वो मनुष्य जैसा है। आगे देखो, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी सृष्टि की। यहां देखो अब ये 7 लाइन में 3 में लिख रखा परमात्मा सह शरीर है, मनुष्य जैसा है। और ईसाइयों ने पूछ ले व्हाट इज द फॉर्म ऑफ गॉड, क्या कहेंगे, गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। और मूल शास्त्र बता रहा है वो आकार मनुष्य जैसा है। अब यही चक्कर पड़ा हुआ है, ये दास बताता है कि तुम अपने उस खजाने ने फिर देखो जहां धन दब रहा है, और उसको ना ढूंढ कर तो मजदूरी करते फिरते एक कौड़ी को ढूंढ रहे हो, और पूरा नहीं पट रहा आपका, क्योंकि आपका रास्ता ठीक नहीं, वो ठिकाना ठीक है। और इसमें देखो कि परमात्मा की तरफ से कहीं भी मांस खाने का आदेश नहीं है, ना हिंदू को, मुसलमान को, ना सिख को, ना ईसाई को, और ना हिंदू को। अब देखो, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा सुनो जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। कहीं इसमें मांस खाने का प्रावधान परमात्मा की तरफ से नहीं है। और जितने भी पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं, और वैसा ही हो गया। आगे देखो 7वां दिन, इस सारे काम का बनाना समाप्त हुआ, और 7वां दिन परमेश्वर जो उस काम को करता था वो 7वां दिन समाप्त किया, और उसके बाद वो अपना विश्राम किया। कहाँ पहुंच गया, ऊपर जहां से आया था सतलोक में, वहां पर पहुंच गया। इस प्रकार ये, अब ये याद रखना कि परमात्मा ने 6 दिन में, प्रभु ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन विश्राम किया। अब मुसलमानों से पूछो परमात्मा कैसा है, बेचून है, बेचून माने निराकार, अनविजिबल, वो तो कभी दिखाई ही नहीं देता। अब देखो, और यही कहानी बिगड़ी पड़ी है। अपने चारों वेद बताओ, परमात्मा आकार में है, जितने ऋषि और महर्षि वो के निराकार है। अब ये दिखाएंगे वो क्यों ऐसा माना, ऐसा क्यों हुआ उनके साथ। ये देखो पवित्र कुरान शरीफ, यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। कुरान शरीफ शेरवानी संस्करण, लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ, यहां से ये प्रकाशित है, छपी है। कुरान शरीफ लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ से प्रकाशित है। इसकी सूरत फुरकानी नंबर 25, सूरत फुरकानी, और नंबर 25 में स्पष्ट लिखा है कि वो परमात्मा मनुष्य, उसका नाम भी बताया इसमें कि वो कौन है वो परमात्मा। अब देखो ये सूरत फुरकानी कुरान शरीफ और सूरत फुरकानी 25, ये पूरा जो का जो विवरण है जो उस कुरान, पवित्र कुरान शरीफ के पृष्ठ में अरबी भाषा है और ये उर्दू इसकी लिपि है। यहाँ देवनागरी लिपि में अरबी भाषा को भी टीका किया इस महापुरुष ने, लिखा है नीचे देखो इस 52वीं आयत में क्या लिखा है, ये देखो इधर, फला तुतियल काफरीन व जाहिदों बिही जिहादन कबीरन। ये कबीर शब्द है, कबीर कबीरन। अब ये कबीर है उसका नाम जो परमात्मा पूर्ण है, और ये भी विशेष, ये भी ध्यान रखना इसमें, इस पवित्र शास्त्र को पढ़ते समय ये भी ध्यान रखना कि इसमें एक तो हजरत मोहम्मद जी को ये कुरान शरीफ बोली जा रही है, आयतें उतर रही हैं हजरत मोहम्मद को, और बोल रहा है उसका खुदा जिसको हजरत मोहम्मद अपना भगवान मानता है, अल्लाह मानता है। हजरत मोहम्मद जी का अल्लाह कह रहा है हजरत मोहम्मद को कि वो परमात्मा कोई और है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसका नाम कबीर है। और वो इस हजरत मोहम्मद जी को एक जिंदा महात्मा के रूप में मिला था। जिंदा होते हैं मुसलमानों में एक संत जो एक काला सा ऊंचे से लंबे चोटे का टोप हुआ अगर काला, और काला ही एक ओवर कोट सा पहने अगर घुटना दतले थी का, उनको ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते। तो हजरत मोहम्मद को पूर्ण परमात्मा वो कबीर स्वयं आकर के मिले थे, और उसको भी रास्ता ठीक बताया था, सचखंड दिखाया था, सतलोक दिखाया था, लेकिन हजरत मोहम्मद को उस जबराइल देवता ने इतना डरा दिया था, उसको पकड़ पकड़ कर दबोचा था, और अपना ये काल तक का ज्ञान, ब्रह्म तक का ज्ञान यानी निराकार तक का ज्ञान उसमें ठोक ठोक कर भर दिया था, और उसके डर के मारे हजरत मोहम्मद ने सचखंड रहना पसंद नहीं किया, क्योंकि उसको वापस छोड़ा गया फिर यहां तू भक्ति कर, तो उसने स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिया। तो अब ये फिर आयत उतरी जब उसने कहा उसके डरते हैं किसने, ज्योत निरंजन ने, ब्रह्म ने, तीन भगवान है, ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। अब देखिए कुरान शरीफ कुरान मजीद इसमें कबीरन शब्द लिखा है, इसमें कबीरा है, क्योंकि हिंदी जैसे आसमान बोलते हैं हम आसमान, और अस्थान बोल देते हैं अस्थान, ऐट जाता है लिखा जाता है स्थान बोल दे अस्थान, अस्थान भी लिखते थे पहले और अब स्थान भी लिखने लगे। क्या हो गया, लीट लिख दी अलग जल्दी, बंद कर रखा, बंद कर लो कर। अब देखिएगा कुरान मजीद, कुरान शरीफ और कुरान मजीद ये एक ही है, और ये सारी हजरत मोहम्मद जी के नियमत उसके निराकार लानवे जी, या तो खुद आकर प्रवेश कर गया उसमें भूत की तरह प्रेतवत, या कोई अपना जबराइल नाम का देवता भेज दिया और फरिश्ता भेज दिया उसको जबरदस्ती पढ़ाया, नहीं पढ़ रहा था पढ़ इसको। अब देखिए ये कुरान मजीद
इसका जो अनुवाद करने वाले हैं फतेह मोहम्मद खान साहब जालंधरी, प्रकाशक है मोहम्मद एंड कंपनी बम्बई 59, सेल एजेंट फ्रीड बुक डिपो दिल्ली 6। इसमें देखिए ये वही है कुरान शरीफ मजीद और फुरकान सूरत फुरकानी 25। इसमें भी नीचे देखो वही ज्यों का त्यों, यहाँ पर कबीरा शब्द लिखा है वही, इसमें तो कबीरन है यहाँ पर कबीरा है, और उसको लिखने में वो कबीरन भी लिख देते हैं, हिंदी में उसको कबीरा भी कर सकते हैं। नीचे देखो तो सीधा लिखा है, आगे देखो वही है जो किनो 52वीं फला तुतियल काफरी काफरन ने व जाहिदुम बी ही जिहादन कबीरा, ये कबीर शब्द है जो का तुम। आगे देखो इन्होंने हिंदी भी किया है, अब देखो तो तुम काफिरों का कहा न मानो उनसे इस कुरान के हुक्म, कुरान के मुताबिक बड़े जोर से लड़ो। अब देखो इन्होंने क्या किया, कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, कबीर का अर्थ इन्होंने बड़ा कर दिया और यही बात बिगड़ गई। अब यहाँ क्या लिखना था कि वो क्या कह रहा है हजरत मोहम्मद का खुदा। अब देखो यहाँ पर भी यही कबीरा शब्द है, सूरत फुरकानी है ये 25 नंबर और आयत नंबर 21 में भी ये कबीरा शब्द है। अब इसमें क्या बताना चाहता है ये दास कि ये हजरत मोहम्मद को जो आदेश दे रहा, जैसे गीता में आदेश अर्जुन को दिया जा रहा है, वो भगवान कोई और है, और वो बोल रहा है कि वो परमात्मा कोई और है। गीता बोलने वाला प्रभु कहता है कि वो परमात्मा कोई और है, उसकी शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, यानी उस परमात्मा की शरण में जा। तो वो परमात्मा कौन है, अब इसमें भी देखिएगा, गीता बोलने वाला भगवान स्वयं कहता है कि एक और प्रभु है, ये भी साथ में लेना क्योंकि इससे मिलता जुलता प्रकरण है इनका। इसमें क्या लिखा है अध्याय नंबर 18 के और श्लोक नंबर 62 में, हे भारत तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम माने सतलोक, शाश्वत स्थानम, ये शाश्वतम स्थानम, सनातन धाम परम धाम सतलोक, हम उसे सतलोक कहते हैं। और फिर देखिए 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में ये भगवान गीता बोलने वाला कहता है कि अर्जुन, 4थे अध्याय के 4थे श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, उनको तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, अर्थात आपा दोनों नाशवान है, तेरी और मेरी तो जन्म और मृत्यु होती रहती है। 4थे अध्याय का 5वां श्लोक, हे अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। और दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा है कि नाश रही तो उसको जान जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की। अब इन सारे सबसे लिंक बनेगा अपना उस परम पिता के साथ जिसकी हमने भक्ति करनी थी और हम नहीं कर पा रहे थे। ये देखो अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर 17 देखो, इसमें क्या कहता गीता बोलने वाला भगवान के नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संसार पूर्ण संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, यानी जिसने सारी सृष्टि रची है रचना की है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। इसलिए 15वें अध्याय का 4था श्लोक फिर देखो, 15वें अध्याय का 4था श्लोक बताया है, हाँ पहले 4थे अध्याय का 34वां देखकर 15वें से लिख बनेगा, उसमें लिखा है कि अर्जुन मैं नहीं जानता उस परम पिता के बारे में, उसको तो कोई संत बताएगा, तेरे भाग जगज्या को तत्वदर्शी संत तुझे मिला, उसके चरणों में जाकर अपना कल्याण करवा लिए, मैं नहीं जानता उस परम पिता के बारे में वो कौन है, उसकी भक्ति कैसे की जाएगी, उसको तो वो संत बताओगा। अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर ये 34 देखो, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको बड़ी भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वो परमात्म तत्व को बड़ी भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। और जो तुझे जब वो संत मिल जा, वो तत्व ज्ञानी कैसा होगा,
कि सारे ब्रह्मंडों के जकर न्यारे न्यारे बता देगा, सारे ब्रह्मंडों के बारे में आपको जानकारी देगा कि ब्रह्म कौन है, परब्रह्म कौन है, पूर्ण ब्रह्म कौन है। तो उसको तत्वदर्शी समझना। अब देखो अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 4 देखो क्या कहता गीता बोलने वाला भगवान, कि उसके पश्चात उस परम पदरूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए। जब तक परम संत मिल जा तो उस परमात्मा की, उस परम पदरूप परमेश्वर के भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए फिर लौट कर मनुष्य यानी साधक फिर लौट कर संसार में नहीं आते, यानी वो कभी जन्म मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। और जिस परमेश्वर से सारे ब्रह्मंडों की यानी पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, और उसी परमेश्वर की मैं शरण में हूँ, मैं भी उसका आधीन हूँ, वो मेरा सुप्रीम बॉस है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, मैं उसके अंतर्गत आता हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अब यहाँ देखना, इसी प्रकार जो की त्यों पवित्र कुरान शरीफ है, और ऐसे पवित्र गीता जी हमें वही ज्ञान दे रही है। हमारे शास्त्र मूल धर्मों के, चारों धर्मों के अलग नहीं है, लेकिन हमारे गुरुओं ने, जो वर्तमान के गुरुओं ने हमें गुमराह कर रखा है, जिन्होंने शास्त्र विद साधना बताकर लोक वेद बना रखा है, हमें को हमारे को उस वास्तविकता से दूर कर दिया। अब देखिएगा वही कुरान शरीफ जहां से हमने आगे चलना है, सूरत फुरकानी 25 कुरान शरीफ वही है, और इसकी कुरान सूरत फुरकानी और 25 नीचे देखो 52 नंबर आयत पर आइए आप। फिर अब यहां देखिए उन्होंने सरलार्थ किया है, ये कबीरा कबीरन लिख दिया उन्होंने, वहां कबीरा लिखा है, एक ही बात है, कबीर कहो चाहे कबीरा कहो चाहे कबीरन कहो। यहां देखो 52वीं आयत, ए पैगंबर हजरत मोहम्मद को ये कुरान शरीफ बनने वाला भगवान उसका खुदा बोल रहा है, अल्लाह बेचू निराकार, जिसको वह निराकार मानते हैं। तुम काफिरों का कहा न मानना, काफिर किसे कहते हैं, ये काफिर की परिभाषा दी है कि जो आन देवी देवताओं को पूजा एक परमात्मा ने छोड़ के वो काफिर कहलाती है। इनका ये भाव है कि ये काफिर तो कबीर परमात्मा को कबीर नहीं मानेंगे, ऐसा कहना इसका कुरान का।